हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य शिष्यों में वंदन करते हुए, महाराज जी शायद गत वर्ष आप नहीं आए थे और उसमें गुरु महिमाएं रही, गुरु के स्वास्थ्य के लिए जीवन में सेवा भी जरूरी है और जब भी गुरु पिता माता या परिवार की बात हो, संसार में तो हम लोग उसी के पीछे भटकते हैं, मगर जो संत लोग हैं उनका जो उत्तरदायित्व गुरु पर है, उनका जो भाव गुरु पर है, उस हिसाब से पूज्य महाराज जी गत वर्ष में यह सुंदर ईशावासी उपनिषद जो 2016 में हमने महाराज जी से प्राप्त की, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो गुरु जी है उनका स्वास्थ्य, पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप हर वर्ष इस तरह से आते रहे। हरिओम।
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव महात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण
गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद
गोविंद सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सद्गुरु देव महाराज की
जय
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
संपूर्ण भारतवर्ष के अध्यात्म तीर्थ स्वरूप प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन जिसमें प्रतिदिन ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के लिए आप लोग प्रातः प्रातः तैयार होकर के आते हैं। संस्था के अधिष्ठात्री देव ब्रह्मलीन परम सद्गुरुदेव सरदेव प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि वंदन। इस पावन मंच के द्वारा नित्य प्रति ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले सभी श्रोतृवृंद ईश्वर कृपा से गुरु प्रसाद का अनुभव करते हुए करीब करीब विगत 32 वर्षों से इस मंच पर मैं भी अपने वाणी और साधना को पवित्र करने के लिए उपस्थित होता हूं। सन 85 में सबसे पहले इस पवित्र तीर्थ का मैंने दर्शन किया। ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव त्यागमूर्ति जी महाराज श्री जी के पावन चरणों में उनके सेवक के रूप में मेरा प्रथम यहां पर आगमन हुआ था और वहां से शुरू होते होते जहां तक मुझे याद है 87 में प्रथम बार इस मंच पर अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ था। शायद वही दिन था ब्रह्मलीन परम सद्गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज का निर्वाण दिवस। श्रद्धांजलि सभा चल रही थी। महाराज श्री जी ने मुझे आदेश दिया कि तुम भी कुछ 5 मिनट अपनी वाणी को पवित्र कर लो। मैंने अपने भाव महाराज जी के चरणों में अभिव्यक्त किए थे और वो समय है और आज का समय है। अनवरत रूप से तभी से इस मंच पर अपने साधना का सौभाग्य प्राप्त होता रहा। कभी कभी बीच में थोड़ा डेंगू वगैरह आ जाए तो बात अलग है, गए साल थोड़ा ऐसा हो गया था, इसलिए जो हमारा प्रवचनात्मक साधना क्रम था उसमें कुछ रुकावट आई, लेकिन आज गुरु कृपा से उसी साधना को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद, गत वर्ष हम लोगों ने विचार करने के लिए यहां पर प्रारंभ किया था, दो दिन तीन दिन के बाद ही कुछ विघ्न आ गया। प्रसंग बहुत सुंदर था, आओ फिर से थोड़ा सा इस प्रसंग को उपक्रम करके जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी, अभी यहां बैठे बैठे जब शांति पाठ प्रारंभ किया तो शांति पाठ में एक सुंदर वाक्य आया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। मैं उस परमात्मा की मुमुक्षु बनकर के शरण ग्रहण करता हूं। कौन है वो परमात्मा? जिस परमात्मा का शोधन इस उपनिषद में हम लोग करेंगे। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, ये जो संपूर्ण सृष्टि हम लोग देख रहे हैं, जब इसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उपक्रम हुआ, तो जिस एक तत्व ने, जिस सत्य तत्व ने, जिस एक सत्य संकल्पक ने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का सर्जन किया, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, पूर्व का अर्थ ही हुआ कि जब सृष्टि का संकल्प हुआ, सृष्टि का सर्जन किया गया, तो सर्जन किया उसी समय, क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा रूप होकर के ही सृष्टि का विस्तार किया है, तो अपने संकल्प मात्र से जिस ब्रह्मा को परमात्मा ने उत्पन्न किया है, साथ ही साथ उसको वेद का ज्ञान भी प्रदान किया गया है। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति, जिसने उस ब्रह्मा के लिए वेद का उपदेश दिया है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो वेद शास्त्र है, कोई आपसे पूछे कि ये तुम्हारा वेद शास्त्र कब से है, आज संसार में जितने भी मजहब, जितने भी धर्म कहलाते हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात करो, उनकी जो मान्यता के ग्रंथ हैं, उनकी एक अवधि है, एक सीमा है। चाहे बौद्धों को लीजिए, चाहे ईसाई धर्म लीजिए, मुस्लिम धर्म लीजिए, सिख जैन आदि जितने भी धर्म अपने माने जाते हैं लोगों में, उन सब के इतिहास को यदि हम लोग देखते हैं तो 2500-2600 वर्षों से पूर्व इनका कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। और जब इनका इतिहास ही नहीं है तो इनके ग्रंथों का भी इससे पहले अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, जितने भी धर्म के इनके ग्रंथ होंगे वो ग्रंथ व्यक्ति रचित माने जाएंगे, व्यक्ति विशेष की कृति है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म चूंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही चला रहा है, और सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है वो है वेद, और वेद भी सृष्टि के प्रारंभ से ही उस परमात्मा ने ब्रह्मा के साथ साथ वेद का भी सृजन किया है। ब्रह्मा को वेद का ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, और उसी ज्ञान को ब्रह्मा ने चारों मुखों से चारों वेदों के रूप में प्रकट किया है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे वेद शास्त्र की जो प्रामाणिकता है बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि सृष्टि के प्रारंभ से वेद चले आ रहे हैं। दूसरी विशेषता, ये व्यक्ति की कृति नहीं है, ये तो परमात्मा का संकल्प है, और परमात्मा सत्य संकल्प होने के कारण हमारा वेद शास्त्र स्वयं सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप वेद ही उसे सत्य परमात्मा का बोध करवाता है। इसलिए वेद का चिंतन करने का अर्थ है कि हम परमात्मा की वाणी से ही परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा की वाणी ही परमात्मा को बता रही है मैं कैसा हूं। सामने वाला तो केवल देख करके और अपने विचारों से अनुमान लगाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, पर मैं कैसा हूं ये तो मैं ही जानता हूं ना। परमात्मा कैसा है उसको तो परमात्मा ही जानता है, इसलिए परमात्मा ही अपनी वाणी में अपने शब्दों में अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। वही वेद का ज्ञान है, वही ब्रह्मा को दिया गया है। ये जो हमारा अपौरुषेय वेद ग्रंथ है सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, इस वेद की बड़ी भारी महिमा है। पहली चीज तो यह है कि कोई शब्द राशि मात्र नहीं है, ये साक्षात वेद ब्रह्म स्वरूप है। विद ज्ञाने से वेद शब्द बनता है, जिसका ज्ञान करवाया जा रहा है वह स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ज्ञान स्वरूप वेद के द्वारा ही बोध होगा, स्वयं का स्वयं के द्वारा ही बोध होगा। ऐसी जो अद्भुत वेदवाणी है उस वेदवाणी का इस पवित्र मंच के द्वारा प्राय चिंतन होता है, कहीं श्रुति और कहीं स्मृति को लेकर के 365 दिन साधक अपनी साधना इस मंच के द्वारा कर रहे हैं। वेद में प्रसिद्धि है, आप लोग जानते हैं, 100,000 मंत्र माने जाते हैं, और 100,000 मंत्र सभी के सभी मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही हैं, क्योंकि मनुष्य में 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तीनों प्रकार के जो दोष मनुष्य के अंतःकरण में आ जाते हैं, उन तीनों प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए संपूर्ण वेद शास्त्र प्रवृत्त है। मल दोष की निवृत्ति के लिए वेद शास्त्र को सबसे अधिक समय देना पड़ता है, सबसे अधिक। इसलिए आज साधक को भी मल दोष की निवृत्ति के लिए सबसे अधिक कर्म करने पड़ते हैं। एक कर्म सर्वथा निरर्थक नहीं होता है, शास्त्रीय पद्धति से जो किया गया कर्म है वो उसके अंतकरण की शुद्धि का साधन बनता है, और सबसे अधिक परिश्रम साधक को मल दोष की निवृत्ति के लिए ही करना पड़ता है। और यही कारण है कि वेद के 100,000 मंत्रों में से 80,000 जो मंत्र हैं वो केवल कर्म परक हैं, क्योंकि चित्त के मल दोष की निवृत्ति के लिए सबसे अधिक साधन करना पड़ेगा। बड़ी जमी हुई गंदगी है, बड़े कलुषित विचार हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए 80,000 मंत्र वेद में बताए गए। इसलिए कर्म कांडात्मक जितने भी मंत्र हैं, यद्यपि मनुष्य का जो अंतःकरण अशुद्ध होता है, विकृत होता है, उसमें दोष आते हैं, वो भी मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही होते हैं। एक कर्म होता है जो चित्त को कलुषित करता है, और दूसरा कर्म होता है जो चित्त को निर्मल कर देता है। आप देखिए, कपड़ा होता है, अगर कहीं गंदे नाले में गिर पड़ा तो गंदे नाले का जो पानी है उस पानी से कपड़ा गंदा होता है, और जब इसकी सफाई करनी होती है तो भी पानी से ही होगी। गंदगी भी पानी से ही चिपकती है और गंदगी का निवारण भी पानी के द्वारा ही होगा। एक पानी है जो कपड़े को गंदा कर रहा है और दूसरा पानी आता है कपड़े को साफ कर देता है। मनुष्य की वासना के द्वारा जो किए गए कर्म हैं, जिन कर्मों में मनुष्य की वासना का की गंदगी पड़ी हुई है, वो वासना की गंदगी से युक्त जो कर्म है अंतकरण को दूषित कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं। अब जो वासना की गंदगी है, पहले उस वासना रूपी गंदगी को अलग करने की जरूरत होती है। तो वासना की गंदगी को अलग करने का तरीका क्या है? विचार तो हर इंसान के भीतर में उठता है, तो जो वासना है भोग की वासना, वो भोग की वासना के बजाय अगर योग की वासना हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति की वासना हो जाए, आत्मकल्याण की वासना बन जाए, तो ये समझ लो कि आपका अंतःकरण ऐसा हो गया जैसे एक गंदे पानी में आपने फिटकरी डाल दी। और फिटकरी डालते ही, फिटकरी भी तो जैसे धूल मिट्टी है, ऐसे फिटकरी भी पानी के अंदर गई, पर धूल मिट्टी पानी को गंदा करती है और फिटकरी जब आप डाल देते हैं तो पानी को साफ कर देती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मकल्याण की जो भावना है, योग की जो भावना है, ये हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने का काम करेगी। और जो भोग की वासना है वो हमारे अंतःकरणों को कलुषित कर देगी। बस ये दोनों प्रकार की वासना हमारे भीतर में, एक कल्याण के लिए और एक संसार के बंधन के लिए होगी। तो सबसे अधिक मनुष्य के जीवन में जो भोग की वासना है वही चित्त को अशुद्ध करती है। तब मनुष्य के कर्म की एक विधा शास्त्र ने दी है, कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय आप कर्म किए बिना रहते हो। शारीरिक, मानसिक, वाचिक कोई न कोई कर्म निरंतर चलता रहता है। तब वो हमारे ही कर्म हमारे चित्त की शुद्धि का साधन बन जाए, उसके लिए वेद विहित कर्म की जरूरत है। धर्म और अधर्म यही कहे गए हैं, वेद प्रणहितो धर्म यह धर्मस्तद विपर्यय। भागवत में आया है कि वेद प्रणहित जो कर्म है वही तो धर्म है। वेद ने कहा कि ऐसा करो कि वो हमारे लिए धर्म है, और ऐसा ना करो वो हमारे लिए अधर्म है। जो नहीं करने वाला है उसको किया अधर्म हो गया, और वेद ने जिसका आदेश दिया कि ऐसा करो वो हमारे लिए धारण करने योग्य धर्म हो गया, वो चित्त की शुद्धि का साधन होगा। इसलिए 80,000 वेद के मंत्रों में विहित और प्रतिषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों का वर्णन किया। विहित कर्मों का वर्णन इसलिए किया कि धारण करो जीवन में, तुम्हारा धर्म है, चित्त की शुद्धि होगी। और प्रतिषिद्ध कर्म के संबंध में कहीं वर्णन आया तो बुराई को समझेंगे नहीं तो बुराई का त्याग कैसे करेंगे। इसलिए त्याग करने के लिए उन चीजों का भी वर्णन आता है। तो चित्त की शुद्धि के लिए 80,000 मंत्र कर्मकांडात्मक हैं, वेद विहित कर्म है। ऐसा करो, इस करने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, तुम्हारा मल दोष दूर होगा। अब जब चित्त की शुद्धि हो जाती है, पानी जैसे आप देखे फिटकड़ी डालने से एकदम निर्मल हो जाता है, परंतु यदि हवा चल रही हो तो पानी स्थिर नहीं होगा, उसमें एक मौज, एक लहर, एक तरंग चलती रहती है। अब उस पानी में ही यदि हम दर्पण की तरह अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो तब तक अपनी शक्ल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी जब तक कि पानी प्रशांत न हो जाए, एक स्थिर अवस्था में न आ जाए। तो मल दोष की निवृत्ति के लिए विहित कर्मों का वर्णन 80,000 मंत्रों में देने पर भी भीतर जो पड़ी हुई वासनाएं हैं वो वासनाएं हिलाती रहती है। अच्छे कर्म करके भी आपने चित्त को साफ किया है लेकिन फिर भी वासनाएं उठती रहती है। उन वासना की जो हवा है, लहर है, तरंग की तरह हमारे चित्त को जो हिलाती रहती है, उस वासना को समाप्त करने के लिए 16,000 मंत्र वेद में उपासना पर आए। उपासना जिसमें हमारे चित्त वृत्ति को एक जगह पर स्थिर करने का प्रयास है। अपने इष्ट में करो, अपने अंतःकरण में करो, चित्त को स्थिर करने के लिए उपासना का वर्णन आया 16,000 मंत्रों में। और शेष जो 4,000 मंत्र हैं वो है उस आवरण दोष की निवृत्ति के लिए। जो हमारे अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, जैसे यूं समझो कि दर्पण में हम अपने शक्ल देखना चाहते हैं पर देखा कि दर्पण बिल्कुल गंदा पड़ा है, तब हमारा प्रथम काम होता है कि एक बार दर्पण की धूल मिट्टी को हटाओ, साफ करो, शक्ल दिखाई पड़ेगी। लेकिन देखा कि दर्पण स्थिर नहीं है तो शक्ल स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है, तब दूसरा काम होता है कि उस दर्पण को एक जगह पर स्थिर कर दो, हिलने ना दो, एक जगह स्थिर हो जाए, फिर अपनी शक्ल दिखेगी कि नहीं बताओ, नहीं दिखेगी। दर्पण साफ कर दिया आपने, दर्पण को स्थिर कर दिया आपने, लेकिन जहां दर्पण लगा है वहां अंधेरा है या दर्पण के ऊपर काला कपड़ा पड़ा हुआ है, कैसे शक्ल दिख जाएगी? तब जरूरत है कि उस जहां पर दर्पण है वहां के अंधकार को हटाइए, प्रकाश की जरूरत है। और जो ही प्रकाश होता है वो अंधकार जिसमें दर्पण पड़ा था, अंधकार किधर निकल करके कौन सी खिड़की से भाग करके गया है आप नहीं बता पाएंगे। प्रकाश होते ही अंधकार गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और स्थिर हो गया, तब भी अज्ञान का जो आवरण पड़ा हुआ है, अज्ञान अंधकार है, उस अज्ञान अंधकार की निवृत्ति करने के लिए 4,000 मंत्र वेदांत के उपनिषदों के रूप में हमारे वेद में आए हैं, जिन 4,000 मंत्रों को उपनिषद संज्ञा दी जाती है, उनको वेदांत संज्ञा दी जाती है। हमारे अंतःकरण का जो आवरण दोष है, अज्ञान दोष है, उसको निवृत्त करने के लिए, उस अज्ञान को हटाने के लिए, खास करके आप इस उपनिषद के प्रसंग में एक चीज अवश्य देखोगे, यहां प्राय प्राय गुरु और शिष्यों के बीच में संवाद चलता है। अज्ञान अंधकार को हटाने के लिए, क्योंकि अंधकार है वहां ज्ञान प्रकाश होने से ही अंधकार गायब हो जाएगा। प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ तो रह नहीं सकते, दोनों का विरोध है। तो जब प्रकाश होगा तो अंधकार गायब होगा, लेकिन ज्ञान प्रकाश कैसे प्रकट हो, उसके लिए गुरु सन्निधि, गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह होना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है उसके लिए। इसलिए उपनिषदों के प्रसंगों को जब भी आप देखते हैं वहां कोई न कोई गुरु शिष्य का संवाद आता है, और जहां कहीं संवाद नहीं भी दिखाई पड़े तो यूं समझ लो कि वो साइलेंट संवाद है, है गुरु शिष्य का संवाद। एक शिष्य का प्रश्न है और गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं, जिज्ञासा है। इसलिए गुरु गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार को गुरु के बिना निवृत्त नहीं किया जा सकता है। वेद शास्त्र के 4,000 मंत्र हैं, उपनिषद के मंत्र उन मंत्रों का वास्तविक रहस्य समझने के लिए किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ज्ञान की ऐसी सलाह का गुरु डालते हैं, सारा अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए जो हमारा सनातन वेद शास्त्र है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हैं। बड़ी विशेषता हमारे वेद शास्त्र की यह आई कि वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि केवल भारत देश में रहने वाले लोगों का ही वेद से कल्याण होगा, अमेरिका वालों का नहीं हो सकता है, कि अफ्रीका वालों का नहीं हो सकता है, कि जापानीज का नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा है। इसका अर्थ है हमारा वेद शास्त्र मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, व्यक्ति विशेष के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो हमारा वेद शास्त्र है। उस वेद शास्त्र का एक छोटा सा अंश, एक भाग शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद पर गत वर्ष हम लोगों ने विचार आरंभ किया था और उसी विचार को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उपनिषद विद्या आप अच्छी तरह से समझते हैं, स्वाध्यायी साधक हैं, सत्संगी साधक हैं। इस वेद का जो तृतीय भाग है जिसको हम वेदांत संज्ञा देते हैं, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत किसको बोलते हैं, उपनिषद का नाम ही वेदांत है। और उपनिषद को वेदांत क्यों बोलते हैं, या यूं कहो कि वेदांत को उपनिषद क्यों कहा गया, जैसे अभी आप सुन रहे थे 4000 मंत्र अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का साधन है, उपनिषद यही काम कर रहा है। कठश्रुति यदि आप पढ़ें तो कठोपनिषद के प्रारंभ में आदि जगद्गुरु भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज इस उपनिषद शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति देते हैं कि उपनिषद शब्द जो बना है वो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उपनि पूर्वक सदलरी धातु के द्वारा उपनिषद शब्द बनता है और इस सदलरी धातु का अर्थ होता है विसरण, गति और अवसाधन। एक ही धातु अनेक अर्थ में आती है। जिस धातु के द्वारा ये उपनिषद शब्द बना है वो तीन अर्थ में प्रयुक्त होती है, ध्यान दीजिएगा, विसरण, गति और अवसाधन, तीन काम करती है। विसरण का अर्थ होता है विनाश, गति का अर्थ होता है प्राप्ति, और अवसाधन का अर्थ होता है विराम, शैतिल्य, विराम अर्थ होगा। विसरण, गति और अवसाधन तीन काम करने वाली जो विद्या होती है उस विद्या का नाम है उपनिषद। ये विद्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला काम करेगी विनाश। किसका विनाश करेगी? शत्रु का विनाश करेगी कि मित्र का विनाश करेगी? किसका विनाश करेगी? भाई शत्रु और मित्र तो ये हमारी वासना से जनित है। इस संसार में न कोई शत्रु होता और न कोई मित्र होता है, पर जिससे हमको शत्रु और मित्र करके दिखाई पड़ते हैं, जहां हमारे भीतर में एक भेद दृष्टि आती है, जहां मेरा और तेरा की दृष्टि आती है, जो बड़े अनर्थ का कारण होती है। भगवद गीता में एक व्यक्ति के मन में मेरा और तेरा करके आ गया, माम कहा पांडवार सेव, ये मेरे और ये उसके, मेरा और तेरा करके जो भावना आई उस व्यक्ति को आप जानते हो कौन है? धृतराष्ट्र कैसा है, कितनी आंख वाला है, बिल्कुल अंधा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जहां पर मेरा और तेरा करके भेद दृष्टि आ रही है, जिसको अंधापन है, जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? अज्ञान। अविद्या ना समझी, उस अज्ञान का, उस अविद्या का, उस का विनाश करने वाली जो विद्या है वही है ये उपनिषद विद्या, विशरण करने वाली, मेरा तेरा मिटाने वाली, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाली जो विद्या है उसका नाम उपनिषद है। मैंने गीता के प्रसंग को इसलिए याद दिलाया कि जब ईशावास्य उपनिषद सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि संपूर्ण गीता का प्रादुर्भाव संभवतः ईशावास्य उपनिषद से ही हुआ है। संपूर्ण गीता की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगता महाभारत उपनिषद के अंदर से निकल करके आया है। इसलिए ये विद्या का पहला काम है, विशरण माने अज्ञान का नाश, अज्ञान अंधकार का नाश, अविद्या का नाश। तो अज्ञान अंधकार को मिटा देवे उस विद्या को बोलते उपनिषद विद्या, वही है वेदांत विद्या। दूसरा है विशरण के बाद में गति। गति शब्द दो अर्थ में है, एक गति है उपासना से देवलोक आदि की प्राप्ति, वो भी एक साधन है, वो भी इसमें आता है, क्योंकि कर्म मुक्ति का वर्णन हमारे यहां पर आता है। यहां साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता, वो भी गति तो होगी, मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक जाना। लेकिन सबसे बड़ा काम इसकी गति का अर्थ होता है, यो समझो कि अवगति। अवगति का अर्थ होता है प्राप्ति, अवगत हो गया, प्राप्त हो गया, अवगति करवा देना। किसकी अवगति? जो नहीं दिखाई पड़ रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था, उसको समझा देवे, उसकी प्राप्ति हो जाए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अज्ञान के कारण मेरा पता ही नहीं है, और मेरा तेरा में ही पड़ा हुआ था। ये विद्या है जिसने उस अज्ञान का नाश किया, और दूसरा काम अपने आप की अवगति करवा दी, अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा दी। ऐसी अद्भुत विद्या है ये जो अज्ञान को मिटावे और अपने स्वरूप की प्राप्ति करवा देवे, अवगति करवा देवे, अपने आप को जना देवे, तू कौन है इसका परिचय करवा देवे। अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हो इस बात का अनुभव करवा दे। इसलिए इसको बोलते हैं उपनिषद विद्या, इसको बोलते हैं वेदांत विद्या, अपने आप की प्राप्ति करवाना। तीसरा अवसाधन, इसका फल क्या होगा? अज्ञान को मिटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपने आप को जानने की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि अनादि काल से हम लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार मातृगर्भ में जाना, ये जन्म मरणात्मक संसार जो हमारा चल रहा था, ये वो विद्या है जो इसे संसार को विराम दे देगी, जन्म मरण को समाप्त कर देगी, वहीं पर विराम लगा देगी, शैतल्य कर देगी, ठंडा कर देगी। जैसे व्यक्ति मरने के बाद उसका शरीर शिथिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ऐसे ही ये जन्म और मरण की गति समाप्त हो जाए, विराम लग जाए। ये विराम देने वाली जन्म मरण को अवगति कराने वाली अपने स्वरूप की और मिटा देने वाली अविद्या अज्ञान को, इस प्रकार की जो विद्या है उसको बोलते हैं वेदांत विद्या, उसको बोलते हैं उपनिषद विद्या, जिसका विचार हम लोग इस मंच से करने जा रहे हैं। सदलरी धातु इसी अर्थ में आएगी, लेकिन इसमें दो उपसर्ग दिए हैं, उप और नि। ये अविद्या का नाश कब होगा, स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, जन्म मरण को विराम कब लगेगा, कैसे लगेगा, तब उसके लिए कहा उप और नि को साथ में जोड़ो। नि शब्द का अर्थ होता है निरंतरता, सततता, अभ्यास में, साधना में निरंतरता आनी चाहिए। मौसम की साधना नहीं बाबा, व्यक्ति विशेष आ गए, चलो काम के स्वामी जी बढ़िया बोलते हैं, चलो सुनने चले, या समय की साधना आ गई, नवरात्र लग गए साधना में लग गए, एकादशी आई साधना में लग गए, सोमवार आ गया चलो शिव जी का वार है आज कथा भी सुनाएंगे, अच्छा दिन है नहीं। साधना में निरंतरता रहनी चाहिए, विचार में निरंतरता रहनी चाहिए, सततता होनी चाहिए, अखंड साधना चलनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। ये विद्या तब काम करेगी जब निरंतरता बनी रहती है। दूसरी बात, चूंकि ये ब्रह्म विद्या है, इसको जताने के लिए, इसको अनुभव करवाने के लिए एक मुक्त पुरुष ही आपको मुक्त कर सकते हैं। संत कबीर का एक दोहा आता है कि बंदे को बंदा मिले छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में देत छुड़ाई। एक व्यक्ति ऐसी किसी स्तंभ कंभे के साथ बंधा हुआ है, एक किसी दूसरे कंभे से बंधा हुआ है, एक दूसरे को पुकार करते रहे कि तुम मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें खोल दूं, और तुम्हें मुझे खोल दो तो मैं तुम्हें खोल दूं, एक दूसरे को कैसे मुक्त कर देगा। परंतु एक व्यक्ति बंधा हुआ है और दूसरा मुक्त है, उसको कहो कि आप तो मुक्त पुरुष हो, मुझे भी खोल दीजिए, आपको मुक्त कर सकता है। इस संसार बंधन से मुक्ति कौन दिलाएगा? जो संसार बंधन से मुक्त हो चुका है, ऐसे अनुभवी गुरु की आवश्यकता होती है, उसकी सन्निधि की जरूरत होती है। क्या आवश्यकता थी ब्रह्मलीन परम सद्गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज मुंबई में आए, क्या आवश्यकता थी, उनको संकल्प हुआ कि एक संस्था बने, किसके लिए जरूरत थी? और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए आज तक प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट लगा हुआ है, क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि मुक्त पुरुष के बिना, जो बंधा हुआ पुरुष है उसको मुक्त कौन करेगा? मैं तो समझता हूं आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, अपने चित्त को, अपने शरीर को, अपने मन दोष को निवृत्त करने के लिए लोग तीर्थों में जाते हैं, वो कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी काशी जी जाते हैं, कभी रामेश्वर में जाते हैं, कभी द्वारका जाते हैं, कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, किसके लिए? पवित्रता पाने के लिए जाते हैं। तीर्थों में जाकर के शरीर को पवित्र कर लोगे, भाव को पवित्र कर लोगे, लेकिन तीसरा जो दोष है आवरण दोष, उस आवरण दोष को मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य तीर्थ में जाकर के आप दूर कर सके। पर उस आवरण दोष को मिटाने के लिए यदि कोई बढ़िया से बढ़िया तीर्थ स्थान है तो मुझे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान दिखता प्रेमपुरी आश्रम, इसमें कोई शक नहीं है। इस अज्ञान आवरण को हटाने के लिए जो देश भर के प्रसिद्ध मुक्त महापुरुष हैं, ट्रस्ट के द्वारा उन्हें आमंत्रित करके, और यहां पर ज्ञान गंगा बही जाती है, इससे बढ़िया और साधन क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं ये अध्यात्म तीर्थ है, अन्य तीर्थों में मल और विक्षेप की निवृत्ति भले कर लो, लेकिन आवरण की निवृत्ति के लिए तो प्रेमपुरी आश्रम में ही आना होता है। इसलिए यहां पर इस उपनिषद में उपशब्द आया है, निरंतर साधना हो, निरंतर साधना हो, और वो निरंतर साधना टेलीविजन के सामने बैठ करके न हो बाबा, वो निरंतर साधना किसी मुक्त के सामने बैठ करके हो। उप का अर्थ होता समीप, सामने, नजदीक, ताकि आप अपनी शंका की निवृत्ति कर सको। इसलिए उपह का अर्थ हुआ गुरु सन्निधि। गुरु सन्निधि में निरंतर अभ्यास करके और अविद्या दोष की निवृत्ति करके, अपने स्वरूप की अवगति करके, और अंत में जन्म मरण को विराम दिया जा सकता है। मुक्त पुरुष की सन्निधि लेकर के स्वयं मुक्त हो सकता है। इसलिए ये उपनिषद विद्या है जो मुक्तों के द्वारा अपने स्वरूप की अनुभूति करवा करके और मुक्त करवा दिया जाता है। ऐसी सुंदर विद्या है ये उपनिषद विद्या, ईशावास्य उपनिषद। जितने भी हमारी उपनिषदें हैं, यद्यपि वेद की जितने भी शाखाएं मानी जाती हैं, प्रत्येक शाखा के अंत में एक एक उपनिषद होती है। सार तत्व तो लास्ट में ही मिलता है ना। जैसे दूध क्या दही का मंथन करते हैं तो उसका जो सारभूत तत्व होता है मक्खन, वो तो मंथन करते 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 अंत में ही तो मिलेगा। इसी प्रकार से जो सारभूत तत्व है अपना आत्म साक्षात्कार, वो तो सारे साधनों के अंत में ही प्राप्त होता है। किसी भी ग्रंथ को उठा के देखो, आप भागवत को देखो, भागवत में सब तरह के प्रसंग आए, साधनाएं आए, विचार आया, भक्ति आई, लेकिन सार तत्व अंत में निकला। राजा परीक्षित को सुखदेव जी पूछते हैं, मरने का डर गया है कि नहीं, मृत्यु भय निवृत्त हुआ है कि नहीं। तब आखिर में जाकर के राजा परीक्षित कहने लगे, भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो निभेम्य हम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई है। पूर्णता कहां है? जहां उस ब्रह्म तत्व की प्रविष्टि हो, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो, अंत में सार तत्व निकलता है। ये उपनिषद भी वेद का अंतिम भाग है, सार तत्व है। इसलिए वेद की जितने शाखाएं हैं, वैसे तो वेद की संपूर्ण शाखाएं 1180 मानी जाती है, मानी ही जाती है। आज संपूर्ण शाखाएं उपलब्ध होना भी मुश्किल है। और प्रत्येक शाखा के अंत में उस मक्खन की तरह जो सार तत्व है वो है उपनिषद। उस शाखा का अंतिम भाग है वो उपनिषद होती है। तो वैसे उपनिषदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1180। परंतु दुष्काल का प्रभाव है कि आज उपलब्ध नहीं है। फिर भी लगभग 100-150 उपनिषदें उपलब्ध होती है। और उन उपनिषदों में भी सभी की सभी कितनी प्रामाणिक है यह कह पाना बहुत कठिन काम है। उनमें भी कुछ ऐसी उपनिषदें हैं जिनकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं। वो उपनिषदें हैं जिन पर आदि जगद्गुरु भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज ने भाष्य लिखा है, बहुत प्रसन्न गंभीर प्रांजल भाष्य दिया। वो निश्चित रूप से प्रामाणिक उपनिषदें हैं। तो 10-11 उपनिषदों पर तो भाष्य उपलब्ध होता ही है, 10 में तो कोई संदेह नहीं। और श्वेतासूत्र उपनिषद का जो भाष्य है, थोड़ा वहां भी महापुरुषों में कुछ विवाद होता है, हो सकता है कुछ प्रवर्ती शंकराचार्यों के द्वारा लिखा गया हो, क्योंकि भाषा शैली में थोड़ा अंतर है। और उन उपनिषदों में देखो, आपको बताएं, दो भाग होता है। कुछ उपनिषदें होती हैं जो मंत्र भाग की होती हैं, और कुछ उपनिषदें होती हैं वो ब्राह्मण भाग की होती है। वेद मुख्य करके दो भाग में, संगीता भाग और ब्राह्मण भाग, जिसको मंत्र भाग भी बोलते हैं, संगीता भाग को, दो प्रकार की उपनिषदें होती है। और उसमें जो मंत्र भाग होता वेद का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संगीता भाग सबसे प्रामाणिक माना जाता है। आर्य समाज जैसी परंपरा वालों ने तो मंत्र भाग की उपनिषद को ही उपनिषद माना है, ब्राह्मण भाग को नहीं स्वीकार किया। चलो जो भी हो, उस विवाद में हमें नहीं जाना, हम चौकी की साधक हैं। पर मेरा कहना यह कि उसमें भी महत्वपूर्ण जो उपनिषदें हैं वो है मंत्र भाग की उपनिषद, संगीता भाग की उपनिषद। और जिस उपनिषद पर हमारा विचार चल रहा है और जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, बड़े सौभाग्य की बात है कि यह हमारी मंत्र भाग की उपनिषद है, संगीता भाग की उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्यायों में जो अंतिम 40वां अध्याय है उपनिषद रूप है, और वही उपनिषद रूप है हमारा ईशावास्य उपनिषद। इसलिए इसकी प्रामाणिकता में तो किसी तरह से कोई विवाद नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कोई भी सिद्धांतवादी हो, निर्विवाद रूप से ईशावास्य उपनिषद को स्वीकार किया है। आओ एक बात और देखते हैं, उपनिषदों के भिन्न 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 नाम जुदा जुदा होता, ये मनुष्य भी जितने होते हैं सबके अलग अलग नाम होते ही हैं, नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा। परिवार में यदि पांच मेंबर है और पांचों का एक ही नाम हो तो जिसको आवाज दें और दूसरा आकर के खड़ा हो जाए, तो नाम भेद तो होता ही है। उपनिषदों में भी इसलिए नाम भेद अवश्य होगा, कहीं प्रसंग को लेकर के उपनिषद का नामकरण हुआ, तो कहीं संवाद को लेकर के नामकरण हुआ, तो कहीं मंत्र को लेकर के नामकरण हुआ। बहुत कुछ उपनिषदें हैं जो प्रारंभ को लेकर के उसके नाम से बोल दिया जाता है। जैसे आप अपने गुरुजनों को, कोई कहते वृंदावन वाले स्वामी जी, कोई कहते हरिद्वार वाले स्वामी जी, नाम बोल देते, कोई काशी वाले स्वामी जी। अब काशी वाले स्वामी जी में इसी भी फिर कहते काशी में तो बहुत स्वामी जी हैं, हरिद्वार में बहुत स्वामी जी हैं, वृंदावन में बहुत स्वामी जी हैं, कौन से स्वामी जी हैं। तब फिर आप आश्रम का नाम लोगे, फलाने आश्रम वाले स्वामी जी। बोले आश्रम में तो बहुत स्वामी जी रहते हैं, कहा बड़े स्वामी जी छोटे स्वामी जी, विशेषण देकर के उसको अलग करते हैं। ऐसे उपनिषदों में भी अलग अलग करके रखा जाता है, कहीं नाम से कहीं प्रसंग से लेकर के बताया जाता है। बहुत कुछ उपनिषदें ऐसी होती हैं जिनको प्रारंभ से लेकर के ही इशारे में बोल दिया जाता है। इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र आता है वो ईशा शब्द है, ईशावास्य शब्द, और ईशावास्य शब्द से ही इस उपनिषद का नामकरण हो गया। दूसरे एक उपनिषद आएगी आपके सामने केनो उपनिषद, आप देखिए वहां भी केन शब्द से प्रारंभ हुआ, केन ऐशितम पदति प्रेषितम मन, तो केन से प्रारंभ होने के कारण वहां पर भी उसका नामकरण हुआ है। तो इस प्रकार से यहां ईशावास्य उपनिषद जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो ईशावास्य शब्द से प्रारंभ हुआ इसीलिए है। अब इसमें जो मंगलाचरण किया बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक संक्षिप्त भाव लेकर के, चूंकि गत वर्ष हम लोग इस पर कर चुके हैं, उसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। परंतु आइए, समय तो हो रहा, घड़ी इनकार कर रही है।
सद्गुरुदेव भगवान की जय।